नहीं, और इधर उधर मैंने बहुत सा देखा। ओहो हो, अब अशोक वाटिका जाने के लिए हनुमान जी महाराज तैयार हो, बड़ी गंभीरता से उसकी सीमाओं को देखते हैं। पहले सीमाओं को देख करके अब हनुमान जी ने सबसे पहले, हे वसु आपको नमस्कार, 8 वसु है उनको नमस्कार किया, 11 रुद्रों को नमस्कार किया और 12 आदित्यों को नमस्कार किया और 2 अश्विनी कुमारों को नमस्कार किया, 49 मरुदगणों को नमस्कार किया, सबको नमस्कार करके और कहा कि हे देवताओं, मैंने मेरी बुद्धि लगा ली, मैंने मेरी शक्ति लगा ली, कहीं पर भी मुझे सीता नहीं मिली, आप लोग कोई मुझ पर कृपा करो, मुझे सीता मिल जाए, उसके लिए मैं आपसे कृपा चाहता हूँ और हाथ जोड़ करके आपसे मैं शक्ति चाहता हूँ और मैं राक्षसों को जीत करके और जनक नंदिनी सीता है वो सीता मैं राम जी को देना चाहता हूँ, जिस प्रकार से तपस्वी पुरुषों के पास सिद्धि आती है उसी प्रकार से मैं भी राम जी को ये सीता देना चाहता हूँ, ये मेरी हार्दिक इच्छा है। ऐसा सुनकर के, ऐसा कहकर के हनुमान जी महाराज ध्यान लगा के बैठ गए। फिर विचार किया कि अरे भगवान का ध्यान करूं, उन्होंने प्रश्रवण पर्वत पर विराजमान भगवान का ध्यान किया और भगवान को प्रणाम किया, लक्ष्मण जी का ध्यान किया, लक्ष्मण जी को प्रणाम किया और कहा कि जिस सीता के दर्शन मैंने किए नहीं है उन सीता माता का जो भी स्वरूप है उस स्वरूप को मैं प्रणाम करता हूं। और वे अपनी जगह से हनुमान जी खड़े हुए, खड़े होकर के फिर अपने मन से कहने लगे, नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजाय नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्निमरुद्गणेभ्य। राम जी को नमस्कार, लक्ष्मण जी को नमस्कार, देवी सीता जी को नमस्कार, रुद्रों को नमस्कार, इंद्र को नमस्कार, यमराज जी को नमस्कार, मेरे पिता वायु देवता को नमस्कार, सात को मैं नमस्कार करता हूँ, चंद्रमा को नमस्कार, अग्नि को नमस्कार, मरुद्गणों को नमस्कार, सुग्रीव को नमस्कार, सब दिशाओं के सब देवताओं को नमस्कार, आकाश को नमस्कार, पृथ्वी को नमस्कार और सबको नमस्कार करके और हनुमान जी महाराज सब तरफ अपनी दृष्टि बेड़ा करके फिर वापस सावधानी से, कहीं भावना में न बह जाऊं, मैं किसी के देखने में तो नहीं आया हूं, ऐसे देख करके हनुमान जी महाराज ने पूर्व दिशा की जो अशोक वाटिका थी उस अशोक वाटिका के वहां पर पहुंच गए और अशोक वाटिका की बहुत ऊंची ऊंची दीवारें थी, उसके ऊपर वो छलांग लगा करके वहां पर अशोक वाटिका की दीवार पर आ गए। दीवार पर आने के बाद उन्होंने अपने शरीर को बहुत छोटा कर लिया, छोटा करके वो मन में विचार करते हैं, यो हो ये अशोक वाटिका है, बड़ी सुंदर अशोक वाटिका है, यहाँ तो राक्षस बहुत रहते हैं, वृक्ष भी बहुत हैं तो राक्षस भी बहुत हैं, यहाँ राक्षस लोगों की बड़ी चौकसी है, बड़ा सावधान सावधान क्षेत्र है, ये इतनी इस जंगल की इतनी रक्षा क्यों की जा रही है, इतना यहाँ पर जंगल को क्या खतरा है, जंगल को खतरा तो हम बंदरों से है, यहाँ तो कोई बंदर मेरी जाति का दिखाई नहीं दिया, अशोक वाटिका की राक्षस लोग शस्त्रों से रक्षा करें, कुछ बात तो कम समझ में आ रही है, परंतु कोई न कोई कारण हो सकता है, चलो अपने को तो सीता जी की खोज करनी है, अतएव मुझे अपने स्वरूप को छोटा कर लेना चाहिए, मुझे राम जी का काम बनाना है इसलिए छोटा कर लेना है, देवताओं आप लोग सहायता करना, हे ब्रह्मा जी, हे शंकर जी, हे देवताओं, हे सिद्धि, हे अग्नि, हे वायु, आप सब लोग आज मुझे जितनी सहायता देनी उतनी सहायता दे दीजिएगा, मैं और समय आपसे कभी सहायता नहीं मांगा हूं, आज तो आपको इस विषय में सहायता देनी होगी, क्योंकि आप लोगों की सहायता के बिना मेरा काम बनता दिखता नहीं है, सब प्राणियों की बड़ी भारी सिद्धि होने वाली है, दास्यन्ति मम ये चान्य अप्यदृष्टा पथि गोचरा, जिनको मैंने नहीं देखा है वे भी मेरी गुप्त रूप से जरूर सहायता करें। इस प्रकार से हनुमान जी महाराज ऊंचा मुख किए हुए बड़ी चतुराई से एक एक को देखते हैं और मन में जाने उनके क्या इस समय उत्साह बना है। वे मन में सोचते हैं यदि मुझे सीता के दर्शन होंगे तो यही हो सकते हैं, ऐसी आशा से उनके मन में प्रफुल्लता छाती है। और उस समय में विचार किया कि भाई कुछ भी हो, ये जो नृशंस रावण है इस रावण के चंगुल से सीता को निश्चित रूप से छुड़ाना है। एक बार केवल वो मेरे नजर में आ जाए, बस इतनी सी बात है, उसके बाद कोई कठिन कोई इसमें विशेष बात नहीं है। वहां पर बैठने पर अशोक वाटिका के वृक्षों का खूब अच्छे ढंग से हनुमान जी ने निरीक्षण किया। हनुमान जी सोच रहे थे कि इन राक्षसों से बच करके अशोक वाटिका के किस दिशा के वृक्षों की तरफ मुझे जाना चाहिए। आते हुए वृक्षों को देखते हैं, साल वृक्ष है, अशोक वृक्ष है, चंपक वृक्ष है, भव्य वृक्ष है, नाग वृक्ष है, और भी कई ऐसे वृक्ष हैं जिनमें खूब पत्ते हैं, केवों में खूब फल है और बहुत ऊंचे हैं। तब उन्होंने उस अशोक वाटिका में उधर जाने की सोची जहां पर खूब से वृक्षों और ऊंचे वृक्षों, ताकि ऊंचाई से सब देखा जा सके। अशोक वाटिका में देखे तो वहां चारों ही कोनों की तरफ से और बीच की तरफ से बहुत से पक्षी हैं, वहां ची ची कर रहे हैं, उनकी आवाज में बड़ी प्रसन्नता है, बड़ी मादकता है। अशोक वृक्ष के वृक्षों को देखा, वो चांदी के समान और सोने के समान देदीप्यमान हो रहे हैं। अशोक वाटिका में देखा कि वहां पर हिरणों के झुंड आते जाते रहते हैं। हनुमान जी महाराज उस समय में बड़े ध्यान के साथ में उन पक्षियों को देखते हैं, जो पक्षी मोरों को नाचते में प्रसन्न हो रहे हैं, जो पक्षी कोयलों की जो है कुहू कुहू आवाज से और भंवरों के गुनगुनाने से बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। उस समय में और भी जितने पशु हैं उनकी मस्ती की आवाज सुनकर के सारे पक्षी वे सब सुखपूर्वक सोए हुए और उसके बाद थोड़े से जगे हुए के समान प्रतीत हो रहे हैं। अनेक वर्ण वाले वृक्षों को पुष्पों को देखा हनुमान जी महाराज ने। तब हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका के अंदर चले गए और किसी एक वृक्ष के ऊपर जाकर बैठ गए। तो थोड़ा सा उस वृक्ष में संचरण हुआ, हिलना हुआ तो हनुमान जी पर बहुत से फूल आ करके गिर गए। हनुमान जी की बड़ी शोभा हुई। उसके बाद हनुमान जी महाराज ने सब दिशाओं की तरफ दृष्टि डाली, सब वृक्ष वसंत में बहुत अच्छे हरे भरे हो गए से थे। तो ऐसा लगा कि ये पृथ्वी मानो एक तरह से स्त्री है और अशोक वाटिका इसका बहुत अच्छा श्रृंगार है। हनुमान जी महाराज एक वृक्ष पर जाकर उस वृक्ष को हिलाते हैं पूरा। वृक्ष के हिलाने से पत्ते और बहुत से पुष्प है वो हनुमान जी को ढक लेते हैं। तब हनुमान जी नीचे उन पुष्पों से और पत्तों से घिरे हुए उनमें से चुपचाप आंख से सब देखते हैं। उस समय में हनुमान जी महाराज के हिलाने से कई वृक्ष ऐसे हो जाते हैं मानो इनके पत्ते रूप वस्त्र और पुष्प रूप आभूषण है ही न हो, ऐसे दिखाई देते हैं। हनुमान जी महाराज उन पक्षियों के बीच में बड़ी सुंदर आवाज करते हैं, वो आवाज सुनते हैं, परंतु जिस वृक्ष पर हनुमान जी बैठते हैं उस वृक्ष से पक्षी थोड़े दूर चले जाते हैं। ऐसी ये अशोक वाटिका है। इस अशोक वाटिका को हनुमान जी ने देखा कि यहाँ के बहुत से ऐसे पशु हैं कि जो दौड़ दौड़ करके जगह जगह अपना चिन्ह छोड़ गए हैं। कई ऐसे पशु हैं जिन्होंने दांतों से कि उन्हें नाखूनों से कि उन्हें चरणों से अशोक वाटिका का जो जंगल है इस जंगल को पृथ्वी को खोद रखा है। कई कई जगह ऐसे भी स्थान है जहां पर मणियों के सी फर्श की चौकियां बनी हुई हैं और वहां पर विश्राम भूमि भी है, माने रावण का ये अशोक वाटिका का वन, इसमें आकर जब घूमता है तो इसको विश्राम भी यहाँ इसके लेने के लिए बहुत सुंदर सुंदर चौकियां बनी हुई है। अशोक वाटिका में बड़ी अच्छी बावड़ियां, एक नहीं अनेकों बावड़ियां बनी हुई हैं। उन बावड़ियों के अंदर जो सीढ़ियां बनी हुई हैं, वे सब मणियों से और सोने से बनाई हुई है। बड़ी बढ़िया सीढ़ियां बनी हुई है। उन बावड़ियों के अंदर कमल और कमलनियां खिले हुए हैं। हंस और सारस का खूब नाद हो रहा है और उन बावड़ियों के अंदर नए ढंग से वहाँ कृत्रिम जो नदियां हैं उन नदियों से उनका मेल कराया गया है ताकि बावड़ियां कभी खाली न हों। और फिर उन्होंने एक बहुत बड़ा उस अशोक वाटिका के अंदर पर्वत देखा। पर्वत देख करके हनुमान जी ने देखा कि देखो इस पर्वत में से कैसी कृत्रिम नदी आ रही है कि वो नदी सब जगह पानी का प्रबंध करती है। और ऐसे चलते चलते हनुमान जी महाराज वहाँ जो है कृत्रिम रूप से जो जल का प्रबंध हुआ है उन स्थलों को देखते हैं और देख करके विश्वकर्मा की कृति को देखकर मन में बड़े हर्ष को प्राप्त होते हैं। अंत में वे एक अशोक वृक्ष के ऊपर जाकर बैठते हैं। अशोक वृक्ष पर बैठ करके वहां पर सब वृक्षों की नए ढंग से शोभा देखते हैं। हनुमान जी महाराज को ऐसा लगा कि मानो मैं कोई सुमेरु पर्वत के शिखर के ऊपर बैठा हुआ हूँ। और फिर हनुमान जी महाराज ने बहुत से वृक्षों को देखा, पुष्पों को देखा और अशोक के उस वृक्ष पर बैठ करके हनुमान जी सोचते हैं यहाँ से मुझे सीता का निरीक्षण करना है। यदि सीता मिलेगी तो ऐसे ही वन में मिलेगी, इस वन में तो मेरा दिल में भी बड़ा उत्साह हो रहा है, नाम इसका जैसा है वैसा ही है, मैं अशोक वृक्ष के नीचे आया हूँ, जैसे मेरा शोक समाप्त हो गया ऐसे ही हमको मालूम है कि मेरा खास जो शोक है सीता के अदर्शन का वो भी शोक मिटने वाला है। ओहो ये सीता निश्चित रूप से मुझे यहीं मिलेगी क्योंकि सीता के रहने जैसी ये जगह है, यहाँ शायद सीता होगी तभी तो मुझे बड़ी आनंद की अनुभूति हो रही है। वो राज महिषी है, वो राघव की पत्नी है, वो इस वन के अंदर घूमने में इधर उधर जरूर गई होगी, मुझे अब दिखी आएगी क्योंकि उसको वन के वृक्षों से बड़ा प्रेम है, वन की लताओं से बड़ा प्रेम है और वन के पुष्पों से बड़ा प्रेम है। ओहो इसी वन के प्रेम ने, पुष्पों के प्रेम ने और पशुओं के प्रेम ने सीता के लिए कितना संकट खड़ा कर दिया था। यदि सीता उस सोने के मृग को राम के लिए न बोलती तो आज सीता जी के लिए इतनी कठिन बात नहीं होती, परंतु क्या करें, संध्या काल मना श्यामा ध्रुवम मेष्यति जानकी, इन वृक्षों के लताओं के आसपास मुझे विशेषता से सीता के तरफ नजर डाल करके देखना चाहिए। ये नदी भी बड़ी अच्छी है, इस नदी का संभवतः जल पीती होंगी और अशोक के जो फल है इनको देखती होगी। अशोक के फूल लाल होते हैं, इन लाल लाल फूलों जब सीता पर पड़ते होंगे तो संभवतः सीता उस समय में अशोक वृक्ष को यही कहती होगी कि भाई तुमने तो हमको ये फूल दिए हैं लेकिन जब तक हमारे प्राणनाथ के हाथ के फूल न मिले तब तक हमको थोड़ी कोई जो है शांति की बात मिलेगी। जरूर मिलेगी, यदि सीता मिलेगी तो इसी अशोक वाटिका में मुझे मिल सकती है। सीता जी मिलेंगी तो नदी में और नदी के किनारे और या फिर अशोक के वृक्ष के इधर आसपास ही मिलेगी। कुल मिलाकर के अशोक वाटिका के बाहर अब सीता का मिलना नहीं है, यही मिल सकती है। ऐसे हनुमान जी महाराज उस पुष्पित अशोक वाटिका को देख रहे हैं। देखने में एक एक वृक्ष के ऊपर फिर भी चढ़ते हैं और एक एक वृक्ष को देखते हैं, सारी पृथ्वी को देखते हैं। ये नंदन वन जैसा बड़ा सुंदर वन है, यहाँ के कई मकान बहुत अच्छे अच्छे बनाए हुए हैं, कोयलों की बड़ी आवाज आ रही है, यहाँ के स्वर्णिम पुष्प बड़े अच्छे लगते हैं, यहाँ के जो पृथ्वी के अंदर जो गुफाएं हैं वो गुफाएं बड़ी गहरी हैं और बड़ी अंदर से सुरम्य है, साथ साथ में इन गुफाओं के अंदर सर्दी के अंदर उष्णता है और उष्णता के अंदर जो है मतलब गर्मी में ठंडी हवा चलती है, ऐसी सुंदर ढंग से इनका घुमाव दिया गया है और गुफाएं बड़ी सुरक्षित हैं। इस प्रकार से यह अशोक वाटिका तो पृथ्वी का बहुत अच्छा श्रृंगार है। यहाँ पर देखो ये वृक्ष है, पन्नाग वृक्ष है, चंपक है, उद्दालक है। ये वृक्ष पुष्पित और फल पल्लवित होते हुए नंदन वन को, चैत्र रथ वन को, सबको पीछे छोड़ चुके हैं। ऐसा लगता है कि ये दूसरा ही कोई आकाश यहाँ आ गया हो। ऐसा लगता है कि चार सागर तो हैं, ये पांचवा सागर है, क्योंकि इतनी बड़ी अशोक वाटिका जगह जगह यहाँ इनके पड़े हुए जो ये फूल है ये आकाश के समान दिखते हैं। और यहाँ जो पर्वत है वो गंधमादन पर्वत के समान लगता है। आगे चाकर चल करके उन्होंने चैत्य प्रासाद देखा। ये चैत्य प्रासाद क्या होता है? जहाँ पर कुल देवताओं का जो मंदिर होता है वो चैत्य प्रासाद होता है। चैत्य बोलते हैं चिति का चैत्य होता है, जो ज्ञान होता है उसका नाम चिति, और चिति से संबंधित जो चैत्य, चैत्य माने ज्ञान देने वाली अपनी जो कुल गुरु, कुल जो गुरु, कुल की मर्यादा और कुल की देवी, उसका जो प्रासाद है माने महल है, उसको चैत्य प्रासाद बोलते हैं। उस चैत्य प्रासाद के वहां पर गए, वहां पर उन्होंने हजारों हजारों खंभे देखे जो मणियों से बने हुए, कैलाश पर्वत के समान बड़े सुंदर हैं, तपे हुए, तपे हुए सोने की वहां पर वेदिकाएं बनी हुई हैं। आंखों के वो आंखों से देखें तो सूर्य की और चंद्रमा की किरणों से आंखें में, और राक्षसी वहां पर अपने हाथ में शस्त्र लिए हुए है, चारों तरफ घूम रही है। ये किसके चारों तरफ घूमती है? तो वो जो घूमने वालों का घेरा ये थोड़ा दूर होता, दूर होने पर हनुमान जी ने बीच में यूं दृष्टि डाली। अब एक यूं है, एक यूं है, तो बीच की दृष्टि, अब बीच की दृष्टि तो टूटती है। तो हनुमान जी महाराज धीरे से एक दूसरे वृक्ष के ऊपर गए और वहां से उन्होंने देखा, अरे यहाँ तो ये बहुत विकराल राक्षसियां हैं। इन राक्षसियों के बीच में एक बहुत सुंदर स्त्री बैठी है, उपवास कृशाम, ये भोजन न करने से बहुत कृश हो गई है और आंखों से इनके आंसू गिर रहा है। बार बार ये लंबी लंबी श्वास लेती है और अपने उत्तरीय वस्त्र से अपने मुख को बार बार ये पूछ रही है। ओह, ये तो ऐसा लगती है जैसे कोई चंद्रमा की रेखा है वो आकर के यहाँ पर गिर गई हो। यहाँ ऐसा लगता है कि जैसे कोई सूर्य की शिखा आकर के गिर गई हो। पीले कपड़े से अपने आप को चारों तरफ से समेटे हुए या ऐसे लगती है मानो कोई पद्मिनी हो। ऐसा लगता है कि किसी तपस्वी की तपस्या है, वो क्षीण होकर के यहाँ पर इकट्ठी बैठ गई हो। ऐसा लगता है कि किसी को ग्रह लग गया हो और वो रोहिणी आकर के यहाँ बैठ गई हो। किस प्रकार से रो रही है और किस प्रकार से कृश हो गई है, शोक में बैठी हुई है, ध्यान कर रही है, दुख से डूबी हुई है, इसका प्रियजन इससे दूर है, राक्षसियों से घिरी हुई है और जैसे अपने समुदाय से अलग हुई हिरणी होती है और जो कुत्तियों के बीच में आ जाए, ऐसे ये दिखाई दे रही है। और ये अपनी एक चोटी है, वो चोटी बहुत लंबी, उसकी चोटी, वो चोटी ऐसी लगती है मानो एक सर्पणी उसके गले के पास में आ गई हो। ये मानो ऐसा लगता है कि अशोक वाटिका की जो शोभा है वो एक जगह आकर इकट्ठी हो गई हो। इसके शरीर से ऐसा लगता है कि बहुत आराम लेने लायक है, परंतु बिचारी को दुख मिल गया है। कौन हो सकती है? हाँ, और तो कौन, जिसके लिए मैं बराबर सोच रहा हूँ, इतनी मलिन अवस्था में भी जिसका दिव्य तेज है, यही सीता है। सीतायम, ये सीता है, सीतेयम, 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 इस प्रकार से यही सीता है। तभी तो देखो इन राक्षसियों के बीच में चुपचाप बैठी हुई है और बोलती कुछ नहीं है। रियमाणा तदा तेन, हाँ यही सीता है जिसका हरण किया था। अच्छा, तो सीता का जब हरण किया था उस समय में सीता के कई आभूषण थे, उन आभूषणों की जगह, हाँ हाँ ये आभूषणों की जगह खाली पड़ी है, जो हमको देख करके आभूषण डाले थे, हमको देख करके जो आभूषण पूरे हैं वो अभी तक भी पूरे हैं, और जो खाली है सो अभी तक भी खाली है, और जिन जिस वस्त्र में डाला था वो कपड़ा इसका वैसा का वैसा फटा हुआ है। ओहो, ये तो वही देवी है, ये नीलकंठी देवी, ये बिंबोष्ठी देवी, माने बिंब के समान जिसके होठ हैं, और सीता यही सीता है, साक्षात साक्षात रति का स्वरूप है। ये भूमि के ऊपर अपने आप को यहाँ पर तापसी के समान लोगों को शिक्षा देने के लिए आई है। ये वो शोक जाल से समाविष्ट है, धूम जाल से आवृत शिखा के समान है, ये स्मृति के समान जो स्मृति संदिग्ध होती है उसके समान दिखाई देती है, मानो आकाश से रिद्धि गिर गई हो, मानो श्रद्धा पर कोई चोट पहुंच जाए तो वो श्रद्धा जैसी होती है वैसी है, आशा जिसकी खंडित हो जाती है वो खंडित आशा के समान है, और जिस सिद्धि में कोई बाधा सी लग जाए वो बाधित सिद्धि है, और ये वो बुद्धि है जिसमें कुछ कालुष्य लग जाए वो कालुष्य पूर्ण बुद्धि है, और जो कोई घटना न घटे फिर भी अपकीर्ति होती है, कीर्ति की अपकीर्ति होती है, वो कीर्ति मानो आकर के गिर गई हो। इस प्रकार से राक्षसों के बीच में उस मृगशावाक्षी सीता को बार बार हनुमान जी महाराज ने देखा, देखा कि देखो इनके कोमल शरीर के ऊपर वायु के द्वारा लाया हुआ मिट्टी का कण छाया हुआ है, और अनेक प्रकार के आभूषण इनके शरीर पर होने चाहिए परंतु बहुत कम आभूषण है। ओहो, यही सीता है, दूसरी सीता नहीं, यही सीता होनी चाहिए। जिस प्रकार से दूसरे अर्थ को बताने वाली वाणी होती है, अर्थांतर को प्राप्त हुई वाणी होती है, उसी प्रकार से गृहांतर को प्राप्त ये सीता है। इस प्रकार से बहुत से कारणों से हनुमान जी के मन में निश्चय होता चला जा रहा है, ये सीता ही है, सीता ही है। सीता के कान के आभूषण वही है, और सीता के हाथ के आभूषण वही है, सीता के चरणों के आभूषण वही है, और सब आभूषणों से सीता सुसज्जित हुई बड़ी अच्छी मालूम देती है। यही राम जी की पत्नी सीता है, जिसको मैंने नष्टा समझ लिया था, वास्तव में वो सीता नष्टा नहीं है, पूर्ण रूप से विराजमान है, ये संतुष्टा है, माने इसको देख करके हमको बड़ा संतोष, ये संतोष देने वाली है। कारुण्येन अनृशंसेन शोकेन मदनेन च, माने राम जी को चार कारणों से याद करती है कि भाई राम जी में बड़ी करुणता है, बड़ी दयालुता है, कि भाई मेरी स्त्री नष्ट हो गई, ऐसा समझ करके राम जी में दया पैदा होती है, और वो मेरे पर आश्रित थी बिचारी, कहां वो कहां गई होगी, निराश्रित होकर के कैसे रहती होगी, ऐसे वो जो है राम जी की दयालुता को बता रही है, और मेरी पत्नी नष्ट हो गई, इस कारण से राम जी को जो शोक होता है वो शोक राम जी का गुण ही है, और इसके साथ जो राम जी का प्रेम है, ये प्रेम की जो अग्नि है ये राम जी का गुण है। चारों गुणों को सीता यहाँ बैठी बैठी राम जी में बता रही है, इसी देवी के लिए राम जी इतना प्रयत्न करते हैं। तभी तो मेरे मन में कभी कभी आता था, यदि सीता मर गई होती तो राम जी उसके प्रयास में इतना मन से क्यों सोचते, वो जिंदी है तभी उनके मन में आती है, अब मुझे विश्वास हो गया कि सीता जीवित है, अन्यथा अन्यथा मैं भी यहाँ से चला जाता। राम जी महाराज ने बड़ा दुष्कर कार्य किया है, राम जी महाराज अभी भी बहुत मुश्किल से दिन निकाल रहे हैं, ऐसी सीता के बिना जीना भी बड़ा मुश्किल है, राम जी महाराज कैसे दिन निकाल रहे हैं। ओहो, ऐसी सीता के लिए यदि राम जी प्रयास करते हैं तो राम जी वास्तव में प्रशंसा के योग्य हैं। उन राम जी की जितनी प्रशंसा की जाए वो थोड़ी है, क्योंकि सीता उनके लिए ही है और उनके योग्य है। इस प्रकार से राम जी की प्रशंसा की, सीता की प्रशंसा की, और इधर सीता को उन्होंने फिर देखा, सीता को देख करके हनुमान जी की आंखें डबडबा गई। डबडबा करने बाद उनके मन में विचार आया कि देखो इस संसार में भाग्य कितना प्रबल होता है, महाराज राम की पत्नी है और लक्ष्मण जी जिन राम का आदर करते हैं उन राम की ये पत्नी है, माने लक्ष्मण तो कहते थे कि पुरुषार्थ पुरुषार्थ कुछ नहीं, भाग्य वाग्य कुछ नहीं, पुरुषार्थ का भरोसा रखो, ऐसे थे लक्ष्मण जी। वो कहते रामचरितमानस में आया ना, दैव दैव आलसी पुकारा, ये भाग्य है, भाग्य आलस्य का काम है, कुछ नहीं, भाग्य बदल दो अपने बाणों से। ऐसे लक्ष्मण जी के सामने भी भाग्य है, वो बड़ा बलवान है। सीता जी दुख पाती है, लक्ष्मण जी जीवित हैं, राम जी जीवित हैं, तो इसका अर्थ है कि भाग्य बड़ा बलवान होता है। ये राम जी के निश्चय को जानने वाली, लक्ष्मण जी के निश्चय को जानने वाली है, कितनी गंभीरता से शोक करती है, शोक में भी एक गंभीरता है। देखो कितनी बढ़िया बात, हनुमान जी की सूझ कितनी गहरी है कि शोक के समय में ये क्षुब्ध नहीं हो रही है, शोक में भी गंभीरता है, शोक भी है लेकिन गंभीरता भी है। तो कहते हैं भाई शोक में क्या गंभीरता होती है, मन के अंदर राम जी के प्रति प्रेम है, बिछुड़ गई बिचारी, इस कारण से शोक तो है लेकिन शोक में भी एक गंभीरता है कि नहीं आगे भी आगे का जो होने वाली बात है उसके ऊपर अपने को चलना है, अपने धर्म पर दृढ़ रहना है। राघव रति वैदेही, असल में देखा जाए राम जी का जो शरीर है, राम जी का जो स्वभाव है, राम जी के जो गुण है और राम जी का जो कुल है, ये सीता के योग्य है, और सीता का व्यवहार, सीता के गुण, सीता के भाव और सीता का शरीर, ये राम के योग्य है। ये दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल ठीक है, विधाता ने इनका मेल कराकर बड़ा अच्छा काम किया, परंतु इस प्रकार से रावण के द्वारा इसका हरण होना, ये काम अच्छा नहीं हुआ। वो मन ही मन में सोचने लगे, हे राम जी, आपने इसी सीता के लिए कबंध को मारा है, आपने इसी सीता की प्राप्ति के लिए बाली को मारा है, इसी सीता के लिए आपने विराट का वध किया है, इसी सीता के लिए आपने 14,000 जनस्थानी राक्षसों का संहार किया है, इसी सीता के लिए आपने अग्निशिखा के समान ज्वाजल्यमान बाणों से खर को मारा है, तृष्णा को मारा है, दूषण को मारा है, और बानरों का बड़ा भारी ऐश्वर्य आपने सुग्रीव को दिलाया है, और वाली बाली पलित जो राज्य था, वाली पालित राज्य, उस राज्य को भी आपने सुग्रीव को केवल सीता के लिए दिलाया है, मैंने भी इसी सीता के लिए सागर को लांघा है, इसी सीता के लिए मैंने इस लंका का निरीक्षण किया है, इसी सीता के लिए मैं रातों रात जगा हूँ और रावण के कुरूप रावण के कुदर्शन किया हूँ, इसी सीता के लिए अनेक अनेक पत्नियों को देखा है, आज सीता मुझे प्राप्त हो गई, मेरा मनोरथ सफल हो गया। ये वो सीता है, जनक नंदिनी सीता है, जो मिथिला के नरेश जनक जी की बेटी है, महाराज दशरथ की पुत्र वधु है, और मिथिला नरेश के यहाँ पृथ्वी में से पैदा हुई थी, और खेती के समय में ये पैदा हुई थी। वो सीता दशरथ जी की पुत्र वधु और बड़े भाई की जो है स्त्री है, मर बड़े पुत्र की स्त्री है, लक्ष्मण के बड़े भाई की स्त्री है। इतना बड़ा सीता को जो गौरव मिला है, ये गौरव मिलकर के भी एक राक्षस के कहने से राक्षसियों के बीच में घिरी हुई है, यहाँ आकर के सीता के यहाँ इतने बड़े गौरव में ये कमी की बात आई है। संतुष्टा फल मूलेन, ये बिचारी इसका क्या कसूर, ये तो फल फूल खाने वाली, अपने पति की सेवा में संतुष्ट, इसने राज घरानों का त्याग किया। यदि सीता चाहती तो अयोध्या से वो जाकर के अपने पीहर जा सकती थी और जनक जी के पास रहती, 14 वर्ष के बाद इधर राम जी आते उधर वो भी आ जाती, और राम जी भी उसको यही चाहते थे कि मेरे साथ न चले, लेकिन फिर भी उसने अपने पीहर का सुख भी छोड़ दिया, और ससुराल का जो दुख था वो दुख को बड़े प्रेम से इसने गले लगाया। ऐसी है सीता, इसके ऊपर भी रावण ने दया नहीं की, और इस रावण इस सीता को उठा के ले आया। रावण के द्वारा जो है सीता का इस प्रकार का तिरस्कार वास्तव में निश्चित ही रावण का नाश करने वाला है। अब मेरे मन में ये भाव आ रहा है कि राघव बड़े प्रेम से सीता को प्राप्त करेंगे, और ये राज्य से भ्रष्ट हुए राम वापिस अपनी अयोध्या नगरी को प्राप्त करेंगे, और सीता बड़े उत्तम सुखों से परित्यक्त हुई बिचारी अपने भाई बंधु पति आदि के साथ अपने ही महलों में बड़ा आराम करेगी। ओहो नैषा पश्यति राक्षस्य है, नैषा पश्यति राक्षस्यो नेमान पुष्प फल द्रुमान। ये भी कैसी निर्भीक है कि राक्षसों को देखती नहीं है, न ये फल पुष्प को देखती है, केवल अपना नेत्र नीचे किए हुए और जो है टप टप आंसू बहाते हुए अपने होठों से केवल इतना ही बोलती है कि राम राघव राम राघव राम राघव पाहि मां, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव रक्ष मां,
राम राघव राम राघव राम राघव पाहि मां, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव रक्ष मां।